ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। धादिंग बस दुर्घटना जांच कार्यदल ने गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल को सौंपी रिपोर्ट। 19 लोगों की हताहत वाली यह दुर्घटना चालक के नियंत्रण खोने से हुई थी, रिपोर्ट में है उल्लेख। गैस का अभाव होने के बाद आधा सिलेंडर गैस वितरण हुआ शुरू। आपूर्ति निरंतर होने का आश्वासन देते हुए अनावश्यक संचित न करने का ऑयल निगम ने उपभोक्ताओं से किया आग्रह। अरनिको राजमार्ग अंतर्गत धुलीखेल खावा सड़क पर चैत 7 गते से 20 गते तक रात को वाहन आवाजाही पर लगेगी रोक। और अमेरिका ने रूसी तेल कारोबार पर तत्काल के लिए हटाया प्रतिबंध। अब समाचार विस्तार से। धादिंग बस दुर्घटना जांच कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल को सौंप दी है। रिपोर्ट स्वीकार करते हुए गृहमंत्री ने इसे जल्द लागू करने की प्रतिबद्धता जताई। गृह मंत्रालय के सहसचिव ऋषिराम तिवारी के नेतृत्व में बनी 7 सदस्यीय समिति ने निष्कर्ष निकाला कि चालक वाहन पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने में असफल रहा, जिससे बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिर गई। फागुन 11 को पोखरा से काठमांडू आ रही यात्री बस धादिंग के बेनीघाट रोरांग 5 भैंसे गौड़ा से त्रिशूली नदी किनारे गिर गई थी, जिसमें 19 लोगों की मौत और 25 लोग घायल हुए थे। धनुषा क्षेत्र नंबर 1 से राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार किशोरी शाह से जुड़े मामले पर रविवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। न्यायाधीश शारंगा सुवेदी और टेक प्रसाद ढुंगाना की संयुक्त पीठ में आज सुनवाई तय थी, लेकिन न्यायाधीश सुवेदी द्वारा इस मामले की सुनवाई करना संभव न होने के कारण सुनवाई आज नहीं हो सकी और इसे रविवार के लिए लंबित कर दिया गया। सर्वोच्च अदालत के अनुसार न्यायाधीश सुवेदी ने कल ही शाह से जुड़े एक अन्य मामले में आदेश दिया था, इसलिए वे इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते थे। निर्वाचन आयोग ने कर्जा सूचना केंद्र की काली सूची में नाम होने का उल्लेख करते हुए फागुन 19 को शाह की उम्मीदवारी रद्द करने का निर्णय लिया था। आयोग के इस निर्णय के खिलाफ शाह ने सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत ने फिलहाल शाह को काली सूची में रखने के निर्णय को लागू न करने का आदेश दिया था। संघीय लोकतांत्रिक मोर्चा ने कहा है कि देश में उत्पीड़ित जनता के सपने पूरे होने की स्थिति बन रही है। जसपा नेपाल के संरक्षक महंत ठाकुर की अध्यक्षता में आज हुई मोर्चा की बैठक ने ये निष्कर्ष निकाला और बयान जारी किया। बयान में कहा गया है कि मधेशी समुदाय के माननीय बालेंद्र शाह बालेन को प्रधानमंत्री के रूप में देख पाना उत्पीड़ित समुदाय के लिए हर्ष का विषय है। साथ ही यह भी कहा गया है कि लंबे समय से मधेशी थारू समेत अन्य उत्पीड़ित समुदायों द्वारा देखे गए सपने और संघर्ष के परिणाम स्वरूप फागुन 21 को हुए प्रतिनिधि सभा चुनाव में बालेंद्र शाह के नेतृत्व को जनता ने व्यापक समर्थन दिया। साथ ही मोर्चा ने यह विश्वास जताया है कि बालन शाह के कार्यकाल में मधेशी थारू आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीड़ित समुदाय के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संविधान संशोधन, सीमांकन में बदलाव, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व, लाल आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिकीकरण जैसे काम किए जाएंगे। मोर्चा ने माननीय शाह के प्रति बधाई और शुभकामना भी व्यक्त की है। प्रतिनिधि सभा चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च में पारदर्शिता नहीं दिखी है, ये बात संयुक्त प्रारंभिक चुनाव पर्यवेक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित है। राष्ट्रीय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नियोग और निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल ईओक नेपाल की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार चुनाव अभियान के खर्च की कानूनी सीमा और वास्तविक खर्च के बीच बड़ा अंतर पाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों के लिए तय खर्च सीमा से कहीं अधिक यानी व्यवहार में करोड़ों रुपए तक खर्च किए गए। आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नियोग के अध्यक्ष डॉ गोपाल कृष्ण शिवाकोटी ने बताया कि चुनाव अभियान खर्च और प्रचार के तरीकों पर विस्तृत अनुसंधान रिपोर्ट अलग से प्रकाशित की जाएगी। प्रत्यक्ष प्रणाली के उम्मीदवारों के लिए भूगोल के आधार पर अधिकतम खर्च सीमा 33 लाख रुपए तय की गई थी, जबकि समानुपातिक प्रणाली के उम्मीदवारों के लिए लगभग 2 लाख रुपए की खर्च सीमा निर्धारित की गई थी। लेकिन हाई प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्रों में वास्तविक खर्च आयोग की तय सीमा से कहीं अधिक पाया गया। अन्य क्षेत्रों में भी उम्मीदवारों ने तय सीमा से लगभग 10 गुना अधिक खर्च किया है, ऐसा रिपोर्ट में दावा किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डिजिटल प्रचार प्रसार पर बढ़ती निर्भरता खर्च की पारदर्शिता के लिए एक नई चुनौती बन रही है। उम्मीदवारी दर्ज होने के बाद सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट क्रिएटर और डिजिटल प्रचार सेवाओं की मांग काफी बढ़ गई है और इन सेवाओं की फीस लाखों रुपए तक पहुंच रही है। हालांकि ये खर्च अक्सर आधिकारिक खर्च विवरण में शामिल नहीं होते, जिससे अदृश्य खर्च बढ़ रहा है। वन तथा वातावरण मंत्रालय ने लैंगिक समानता, अपांग मैत्री और सामाजिक समावेशन रणनीति और कार्यान्वयन योजना लागू की है। मंत्री माधव प्रसाद चौलागाई ने कार्यक्रम में रणनीति दस्तावेज जारी करते हुए इसे सभी क्षेत्रों में व्यावहारिक रूप से लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नीति के साथ साथ सोच बदलकर लैंगिक मैत्री कार्यस्थल बनाना भी जरूरी है। स्थानीय लोगों के विरोध के कारण नुआकोट के बंचरे डाडा में काठमांडू घाटी का कचरा फेंकना रोक दिया गया है। बंचरे डाडा क्षेत्र के निवासियों ने काठमांडू महानगरपालिका और शहरी विकास मंत्रालय के साथ हुए पुराने समझौतों को लागू न किए जाने के विरोध में कचरा फेंकने नहीं दिया। स्थानीय निरंजन संजेल के अनुसार जब तक पुराने समझौते लागू नहीं होते तब तक कचरा नहीं फेंकने देने की मंशा से काठमांडू से कचरा लेकर आए वाहनों को वापस भेज दिया गया। इससे पहले कार्तिक 16 को तत्कालीन शहरी विकास मंत्री कुलमान घिसिंग के पुराने समझौतों को लागू करने की प्रतिबद्धता जताने के बाद अवरोध हट गया था। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं, बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्य आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाल ऑयल निगम ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि खाना पकाने वाले एलपी गैस का आयात लगातार हो रहा है, इसलिए अनावश्यक भंडारण न करें। निगम के प्रवक्ता मनोज ठाकुर ने कहा कि गैस का आयात पहले की तरह ही हो रहा है, यदि कहीं अनियमितता दिखे तो जानकारी देने का अनुरोध किया गया है। मध्य पूर्व के हालिया घटनाक्रम के कारण उपभोक्ताओं में गैस की मांग बढ़ने के बाद निगम ने उद्योगों को आधा सिलेंडर गैस बेचने का निर्देश दिया है। आज से गैस उद्योगों ने 7.1 किलो गैस भरकर सिलेंडर बाजार में भेजना शुरू किया है। लगातार सूखे भूस्खलन के कारण धनकुटा की भेड़ेटार नामजे सड़क खंड पूरी तरह बंद हो गया है। सामान्य वर्षा के बाद भूस्खलन शुरू होने से बीती रात से यातायात बंद है। भेड़ेटार इलाका पुलिस कार्यालय के अनुसार ऊपर से लगातार पत्थर और मिट्टी गिरने के कारण फिलहाल भूस्खलन हटाना कठिन हो रहा है। अरनिको राजमार्ग के धूलीखेल खावा खंड पर चैत 7 से 20 गति तक यातायात बंद रहेगा। सड़क डिवीजन कार्यालय भक्तपुर के अनुसार सड़क पर डामर यानी पिच करने के लिए शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक वाहनों का संचालन बंद किया जाएगा। सूचना अधिकारी इंजीनियर दीपक याकामी के अनुसार इस खंड के 4 किलोमीटर सड़क पर डामर बिछाया जाएगा। सर्वोच्च अदालत ने राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी की मध्य प्रदेश सभा सदस्य कंचन विच्छा की रीट याचिका आज खारिज कर दी। न्यायाधीश कुमार रिग्मी और अब्दुल अजीज मुसलमान की संयुक्त पीठ ने सुनवाई के बाद रीट खारिज करने का फैसला किया। पार्टी के निर्देश के विपरीत नेकपा एमाले के नेता सरोज यादव के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री बनने के बाद पार्टी ने विच्छा को प्रदेश सभा सदस्य पद से हटाने का निर्णय लिया था। समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य विच्छा ने अपने पद की बहाली की मांग करते हुए सर्वोच्च अदालत में रीट दायर की थी। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के पिता मोहन प्रसाद ओली के पार्थिव शरीर का आज पशुपति आर्यघाट पर अंतिम संस्कार किया गया। उनके पार्थिव शरीर को ज्येष्ठ पुत्र केपी शर्मा ओली ने मुखाग्नि दी। श्रद्धांजलि देने के लिए आर्यघाट पर एमाले सहित विभिन्न दलों के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। पूर्व प्रधानमंत्री ओली के पिता मोहन प्रसाद ओली का 97 वर्ष की आयु में भक्तपुर के नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया था। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछा ने और नेपाली कांग्रेस के नेता गगन कुमार थापा ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से श्रद्धांजलि और संवेदना व्यक्त की। इसी तरह रासोपा से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार निर्वाचित बालेन्द्र शाह ने भी सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि और संवेदना व्यक्त की है। नेपाल सरकार ने निर्णय लिया है कि ईरान के नागरिकों को अब नेपाल में आगमन वीजा ऑन अराइवल वीजा उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। सरकारी और कूटनीतिक पासपोर्ट धारकों को छोड़कर अन्य ईरानी नागरिकों को अब नेपाल आने के लिए विदेश में स्थित नेपाली दूतावास से वीजा लेकर ही प्रवेश करना होगा। इस निर्णय के साथ नेपाल में ऑन अराइवल वीजा न मिलने वाले देशों की संख्या 13 हो गई है। ये जानकारी अध्यागमन विभाग ने दी। ऐसे अन्य देशों में नाइजीरिया, घाना, जिम्बाब्वे, स्विट्जरलैंड, कैमरून, सोमालिया, लाइबेरिया, इथियोपिया, इराक, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान और सीरिया शामिल हैं। इसी तरह शरणार्थी स्थिति वाले ट्रैवल डॉक्यूमेंट रखने वाले व्यक्तियों को भी नेपाल में प्रवेश के लिए विदेश स्थित नेपाली दूतावास से वीजा लेना अनिवार्य होगा। चितवन में इन दिनों चैती धान की रोपाई जोरों पर है। पिछले कुछ वर्षों में यहां पारंपरिक रोपाई की बजाय मशीनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई चितवन के माध्यम से आधुनिक धान रोपाई मशीन के प्रयोग से रोपाई में यंत्रीकरण तेजी से बढ़ रहा है। ये जानकारी कार्यालय ने दी। कार्यालय के कृषि अधिकारी काशीराम पांडे के अनुसार शुरुआती समय में मशीन का महत्व समझाना और उसका उपयोग सिखाना थोड़ा कठिन था, लेकिन अब किसान खुद मशीन की मांग करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि शुरू के वर्षों में कर्मचारियों को खेत में जाकर बीज रखने की प्रक्रिया और मशीन से रोपाई की विधि सिखानी पड़ती थी। अब अधिकांश किसान इसे सीख चुके हैं और मशीन की मांग भी बढ़ रही है। पांडे के अनुसार मशीन से खेती करने पर कम लागत में अधिक उत्पादन होता है, इसलिए किसान इसमें अधिक रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने के लिए कृषि में यंत्रीकरण जरूरी है। इससे खेती की लागत लगभग 30-40% तक कम की जा सकती है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान के साथ अमेरिका इसराइल युद्ध के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से अमेरिका ने समुद्र में मौजूद जहाजों पर पहले से लोड किए गए प्रतिबंधित रूसी तेल और पेट्रोलियम पदार्थों को अन्य देशों के द्वारा खरीदने की अस्थायी अनुमति दी है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के अनुसार ये अनुमति वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए एक अल्पकालिक उपाय के रूप में दी गई है। ये 11 अप्रैल तक लागू रहेगी और केवल उन तेल खेपों पर लागू होगी जो पहले से ट्रांजिट में है। खाड़ी क्षेत्र में जहाजों और ऊर्जा अवसंरचना पर हमले बढ़ने व ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जलमार्ग को बंद करने की चेतावनी दिए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में तेज उतार चढ़ाव देखा गया है। गुरुवार को कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $100 से ऊपर पहुंच गई थी, जबकि आज एशियाई बाजार में ब्रेंट क्रूड 0.2% गिरकर $100.29 प्रति बैरल पर आ गया। ऊर्जा बाजार में बढ़ती अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने 40 करोड़ बैरल तेल बाजार में जारी करने की घोषणा की है। साथ ही फिलीपींस, जापान, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड जैसे देशों ने ईंधन बचत और कीमत नियंत्रण के विभिन्न उपाय लागू किए हैं। खाड़ी क्षेत्र में जहाजों पर हमलों और हॉर्मुज जलमार्ग के संभावित अवरोध के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और विश्व अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव बढ़ने की चिंता जताई जा रही है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25-27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12-14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। धादिंग बस दुर्घटना जांच कार्यदल ने गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल को सौंपी रिपोर्ट। 19 लोगों की हताहत वाली यह दुर्घटना चालक के नियंत्रण खोने से हुई थी, रिपोर्ट में है उल्लेख। गैस का अभाव होने के बाद आधा सिलेंडर गैस वितरण हुआ शुरू। आपूर्ति निरंतर होने का आश्वासन देते हुए अनावश्यक संचित न करने का ऑयल निगम ने उपभोक्ताओं से किया आग्रह। अरनिको राजमार्ग अंतर्गत धुलीखेल खावा सड़क पर चैत 7 गते से 20 गते तक रात को वाहन आवाजाही पर लगेगी रोक और अमेरिका ने रूसी तेल कारोबार पर तत्काल के लिए हटाया प्रतिबंध। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।